जया कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी शोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय शोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रणाम करें। जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। मैथिलीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बन देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ये पुस्तक आप लोग देख रहे हैं, कृष्ण भावनामृत प्रबोधिनी। ये एक छोटी सी पुस्तक है। इसमें आपके जीवन के लिए जो भी आवश्यक बातें हैं, जैसे नियम आप अपने घर में रह करके पालन कर सकते हैं, कैसे माला पर जप करना है, क्यों जप करना है, भगवान का मंदिर अपने घर में कैसे बनाना है, भगवान को कैसे भोग लगाना है, इन सब बातों की आवश्यक जानकारी इस पुस्तक में है। इस पुस्तक को आप लोग, आप लोगों से कितने लोग जानते हैं इस पुस्तक को, हाथ उठाइए। और आप लोगों से कितने लोगों के पास ये पुस्तक है, हाथ उठाइए, है ना। तो बहुत कम लोग। ये पुस्तक यहाँ पर है हमारी बुक शॉप में, है। देखिए ये पुस्तक जो है बहुत सस्ती है और बहुत छोटी सी है। इसको जो है आप जरूर लीजिए। इसका नाम है कृष्ण भावनामृत प्रबोधिनी, है ना। इसमें बड़े सरल तरीके से हमारे आंदोलन की जो बातें हैं वो बताई गई हैं। इनमें, इसमें से ही मैं आपको कुछ बातें पढ़ के सुनाऊंगा और उस पर चर्चा करूंगा। तो आप लोग ध्यान से सुने। इस विषय में मैं आप लोगों से भी कुछ पूछूंगा और आप लोग भी मुझसे पूछेंगे। देखिए सबसे पहली बात है, बहुत ही जो महत्वपूर्ण है और आवश्यक है, बृहन्नारदी पुराण में एक श्लोक मिलता है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा। इसका अर्थ है कि केवल हरि नाम, केवल हरि नाम और केवल हरि नाम ही कलयुग में गति है, अन्यथा गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब सोचिए कि संस्कृत के श्लोक में बहुत सीमित शब्द होते हैं और उन सीमित शब्दों में बहुत लंबी चौड़ी बातें बताई जाती हैं। आपने देखा होगा गीता का एक श्लोक है, उसका अनुवाद कितने ज़्यादा शब्दों में होता है। आप समझ रहे, इस श्लोक के जो अक्षर हैं केवल 32 अक्षर होते हैं, लेकिन अनुवाद जब किया जाता है तो उससे दोने और तीन गुने अक्षरों में होता है अनुवाद, है ना। इस श्लोक जब बनाया जाता है तो थोड़े शब्दों में बहुत ज़्यादा बात बताई जाती है, लेकिन ये जो श्लोक है ये इस प्रकार से बनाया गया है कि थोड़ी सी बात को बहुत शब्दों में बताया गया है। क्या एक ही बात है हरि नाम, एक ही बात है हरि नाम, उसको श्लोक में तीन बार बोला गया है। क्या हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, है ना। सोचिए अगर श्लोक में कोई बात अगर हाँ दोहराई जाए है? तो सोचिए कितनी महत्वपूर्ण होगी वो बात। और केवल दोहराई नहीं गई बल्कि तीन बार कही गई है। क्या कहा गया है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। केवलम केवल है ना, और उसमें एव भी लगाया है। एव का भी मतलब है मात्र, केवल इतना ही है ना। तो देखिए इस श्लोक की पहली पंक्ति में केवल इतनी बात है हा? क्या हरिनाम, इस श्लोक की पूरी पंक्ति। फिर दूसरी पंक्ति में कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा, अन्यथा गति है ही नहीं, नास्ति एव ना अस्ति एव है ही नहीं, अन्यथा गति है ही नहीं। तीन बार फिर कहा गया, मतलब सोचिए कि कितना ये महत्वपूर्ण विषय है कि पहले जो विधि बताई है उसको तीन बार दोहराया गया कि केवल हरिनाम केवल हरिनाम केवल हरिनाम ही गति है। इसके बाद निषेध भी बताया गया है, निषेध मतलब नहीं, तो निषेध को भी तीन बार बताया गया है, नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव अन्यथा गति नहीं है। कौन से युग में, कौन से युग की बात है ये? कलयुग, ये कलयुग चल रहा है। आप लोग कलयुग में रह रहे हैं, आप लोग कलयुग में रह रहे हैं। इस कलयुग के लिए बृहन्नारदीय पुराण में एकमात्र उपाय यही बताया गया है, हरिनाम। और फिर अगर कोई सोचे कि ठीक है एकमात्र उपाय है लेकिन कुछ और भी तो उपाय होंगे हैं, कुछ दूसरे भी रास्ते से हम निकल सकते हैं, तो दूसरी पंक्ति में मना किया गया है, नहीं दूसरा रास्ता नहीं है नहीं है नहीं है। आप सोचिए कोई अगर ऐसे बोले इधर से रास्ता नहीं है नहीं है नहीं है, इसका मतलब मत जाइए, रास्ता बंद है। अगर आप जाएंगे भी तो वापस आएंगे, बंद मिलेगा रास्ता, बताया जा रहा है। और कोई रास्ता नहीं है नहीं है नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कोई रास्ता नहीं है। आप सोचते हैं बहुत रास्ते हैं बहुत रास्ते हैं, और आप जा भी सकते हैं लेकिन आगे चल करके क्या होगा, बंद मिलेंगे, नो एंट्री। कलयुग में और किसी रास्ते से एंट्री नहीं है, एकमात्र एंट्री कहां से है, हरिनाम, केवल हरिनाम। हरिनाम ही एकमात्र रास्ता है। इसके बाद कली संतरण उपनिषद में बताया गया है कि हरिनाम क्या होता है। बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया हरि नाम, हरि का नाम, लेकिन वो हरि नाम भी कैसे होता है कैसा होता है, तो इसमें 16 शब्द बतलाए गए हैं। 16 शब्दों का होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सुनिए कली संतरण प्रसाद में ये हरि नाम 16 शब्दों का बतलाया गया है। उसके बाद क्या कहा गया है, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमस नाशनम। ये 16 नाम है, हरि नाम का मतलब 16 नाम। इति षोडशकम नाम नाम कली कलमस नाशनम, ये 16 नाम कलियुग के कलमस का नाश करते हैं। आप समझ रहे, कलयुग में बहुत कलमस हैं, कलयुग के जो कलमस हैं कलयुग के जो कलमस हैं हाँ वो कितने हैं बताया गया है, कलियर दोष ने थे राजन, समुद्र है कलयुग, पापों का समुद्र है। आप समझ रहे, समुद्र में क्या होता है? पानी पानी होता है। और कलयुग क्या है? पापों का समुद्र, पाप ही पाप हैं। आप जिस कलयुग में आए हैं, ये कलयुग कैसा है? पाप ही पाप हैं। पाप के सिवा कुछ नहीं। समुद्र में क्या होता है? पानी के सिवा कुछ नहीं होता, पानी ही पानी होता है, हैं? और कुछ नहीं मिलेगा पानी के सिवा। इसी प्रकार से कलयुग में कुछ नहीं मिलेगा पापों के सिवा, पाप ही पाप हैं। और ये पाप कहाँ ले जाएंगे आपको? नरक में ले जाएंगे, है ना। लेकिन ये 16 नाम, ये 16 नाम जो है, ये क्या करते हैं? कली कलमस नाशनम, कलयुग के पापों का नाश करते हैं। इति षोडशकम् नाम नाम कली कलमस नाशनम नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। क्या कहा गया है कि 16 नाम कलयुग के पापों का नाश करते हैं। नाता पर तरोपाया सर्ववेदेषु दृश्यते, इससे बढ़कर के और उपाय समस्त वेदों में नहीं है। क्या बताया गया? इससे बढ़कर के उपाय और समस्त वेदों में नहीं है। सर्ववेदेषु, समस्त वेदों का मतलब है जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, कहीं भी इससे बढ़कर के उपाय नहीं मिलेगा। आप सोचिए, कोई सोचता है कि इतना सरल उपाय है तो इतने सरल उपाय को मैं क्यों करूं, और कठिन कठिन उपाय हैं, बताए गए हैं, है ना, उनको करें। लेकिन वो उपाय कठिन भी हैं, लेकिन इससे अच्छे उपाय नहीं है, इससे बड़े उपाय नहीं है। ये सरल भी है और साथ साथ शक्तिशाली भी है। ये उपाय जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली भी है। नहीं तो लगता ये है कि अगर सरल उपाय होता है तो इसमें शक्ति नहीं होगी, कठिन उपाय में ज़्यादा शक्ति होगी। लेकिन बताया गया है कि नहीं, ये जितना सरल है उतना ही ये शक्तिशाली है। नाता पर तरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, समस्त वेद, समस्त वेद का मतलब जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, चाहे उपनिषद देख लो, चाहे पुराण देख लो, और चाहे दूसरे भी धर्म ग्रंथों के उपाय देख लो, दूसरे भी धर्म ग्रंथों के भी उपाय। इसलिए ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, ये वास्तव में काम कर रहा है, पूरी दुनिया में काम कर रहा है। आप समझ रहे हैं? दूसरे दूसरे धर्मों की जो विधियां हैं, जो शुद्धिकरण की विधियां हैं, वो काम नहीं कर रही हैं, वो काम नहीं कर रही हैं। इसलिए हरे कृष्ण आंदोलन पूरी दुनिया में फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि दूसरे दूसरे धर्म, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, उनकी विधियां काम नहीं कर रही। और ये भविष्यवाणी है, शास्त्रों में भविष्यवाणी है, है? पूरे विश्व में ये हरे कृष्ण महामंत्र फैल रहा है और फैलता रहेगा। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। संपूर्ण पृथ्वी में जितने नगर और गांव हैं, सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी जब की थी, उस समय भारत में ये हरि नाम फैला था, लेकिन विदेशों में कोई रास्ता नहीं था। भारत से बाहर जाने का कोई रास्ता उस समय आविष्कृत नहीं हुआ था। तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि पूरी पृथ्वी में नगर ग्राम में ये हरि नाम कैसे फैलेगा। उस समय भारत से जो है बाहर जाने का रास्ता नहीं था, ना तो पानी से रास्ता था जाने का, और ना हवा से रास्ता था जाने का। ये सब आविष्कार नहीं हुए थे, मशीनों के आविष्कार नहीं हुए थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी की थी पहले से ही। और जब भारत से बाहर जाने के रास्ते बन गए, और भारत से लोग जाने लगे विदेशों में और विदेशों के लोग भारत में आने लगे, उस समय भी कोई नहीं सोच पाया कि हरि नाम कैसे भारत से बाहर जाएगा। लेकिन चूंकि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि पूरी पृथ्वी में जितने नगर गांव हैं सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा, चूंकि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा ये हुई, तो इसके बल पर प्रभुपाद गए थे 1965 में विदेशों में। उनके पास बल केवल इस भविष्यवाणी का था, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा का बल था, प्रभुपाद के पास कोई बल नहीं था। आप सोचिए 70 वर्ष की अवस्था में कैसी हालत होती है। आप लोगों में से कोई व्यक्ति 70 साल की अवस्था का है, 70 साल या 70 साल से ऊपर की अवस्था का नहीं है? 70 साल की अवस्था में कैसी हालत होती है आप सोचिए। तो प्रभुपाद गए थे, उनके पास तो कोई बल नहीं था, ना तो उनके पास पैसे का बल था, पैसे का बल नहीं था, उनके पास केवल 40 रुपए थे। 40 रुपए क्या होता है? 40 रुपए कुछ नहीं होते, 40 रुपए थे उनके पास, ना तो पैसे का बल था और ना शारीरिक बल था। उनके 70 साल की अवस्था में शरीर में कहाँ बल होता है, ना पैसे का बल था, ना शरीर का बल था और ना कोई व्यक्ति था उनके पास, कोई व्यक्ति का बल भी नहीं था, अकेले है? ना धन बल था और ना जन बल था और ना शरीर बल था। व्यक्ति के पास तीन बल होते हैं ना, शरीर बल होता है या धन बल होता है या जन बल होता है। ना उनके पास जन बल था, कोई उनके साथ नहीं था, अकेले थे, ना शरीर बल था, 70 साल की अवस्था के वृद्ध मृत्यु के निकट, और क्या, ना धन बल था, धन भी नहीं था उनके पास। एक पानी के जहाज में जो मालवाहक जहाज होता है उसमें प्रभुपाद गए थे, और जब प्रभुपाद गए थे तो न्यूयॉर्क में उन्हें किसी ने भी नहीं पहचाना, कोई भी नहीं जानता था प्रभुपाद को, लेकिन प्रभुपाद को केवल चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि मेरा एक सेवक पहुंचा है, वो चैतन्य महाप्रभु को जो है सूचना मिली थी कि मेरा एक सेवक पहुंचा है न्यूयॉर्क में और प्रभुपाद को जो है केवल चैतन्य महाप्रभु की इस भविष्यवाणी का ही बल था, है ना, और वो सफल हुआ चैतन्य महाप्रभु, सोचिए, है ना। इसी बल पर प्रभुपाद ने जो है पूरे संसार में 108 मंदिर बनवा दिए और हजारों अनुयायी बनाए, हजारों अनुयायी बनाए, है ना। और प्रभुपाद ने क्या कहा, प्रभुपाद ने क्या कहा कि मेरी सफलता का रहस्य कहाँ पर है, कि मैंने चैतन्य के संदेश को बदला नहीं है, मैंने चैतन्य के संदेश को बदला नहीं है, मैंने चैतन्य संदेश को ज्यों को त्यों दे दिया है, यही मेरा बल है, मेरी शक्ति यही है, इसी में अपना कोई संदेश नहीं। लेकिन हर कोई अपनी बात जोड़ना चाहता है, अपना संदेश देना चाहता है ना, अपने को महत्वपूर्ण बनाना चाहता है ना। तो भगवान के संदेश में आप अपना संदेश भी जोड़ते हैं, अपनी बात जोड़ते हैं, तो वो संदेश क्या होता है, दूषित हो जाता है, फिर उसमें कोई शक्ति नहीं रहती। लेकिन प्रभुपाद ने श्री चैतन्य के संदेश को यथावत दिया, ज्यों का त्यों दिया, उन्होंने कहा ये संदेश दिव्य है, मैं तो नीच हूँ, ये संदेश ऊंचा है, इसलिए आप लोग लीजिए। प्रभुपाद ने अपने को नहीं दिखाया कि मैं महान व्यक्ति हूँ, प्रभुपाद ने अपने को महान नहीं बताया, अपने को क्या बताया, मैं तो नीच हूँ लेकिन संदेश बहुत ऊंचा है। प्रभुपाद ने क्या कहा कि जैसे पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन क्या करता है, आपके संबंधी का जो लिखित पत्र होता है वो आपके पास पहुंचा देता है, उसमें अपनी बात तो कुछ नहीं जोड़ता वो, पोस्टमैन। तो प्रभुपाद गए थे भारत से विदेशों में पोस्टमैन के रूप में, पोस्टमैन किसके पोस्टमैन, चैतन्य महाप्रभु के पोस्टमैन के रूप में गए थे। तो प्रभुपाद ने जो है चैतन्य महाप्रभु का संदेश दिया है ना, यहाँ तक कि हरि नाम भी 16 नाम का हरि नाम है। तो प्रभुपाद ने 16 नाम को ना तो 17 नाम बनाया ना 15 नाम बनाया, 16 नाम बनाया है ना, इतनी जो है शुद्धता। तो इसी शुद्धता के बल पर ही आंदोलन फैल रहा है और लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, विदेशों में भी इस हरि नाम को लोग स्वीकार कर रहे हैं। जहां लोग महानास्तिक हैं जो भगवान को नहीं मानते वहां भी ये हरि नाम काम कर रहा है। गिरधारी स्वामी बहुत सालों पहले भारत में आए थे, अभी तो बहुत सालों से आए नहीं, तो मुझे उनका कोई संदेश भी नहीं मिला है। वे एक सन्यासी हैं, प्रभुपाद के शिष्य हैं, तो चीन में वो प्रचार करते थे। तो उन्होंने कहा कि भारत में अगर आप भगवान के बारे में कुछ बोलते हैं तो हजारों की संख्या में लोग आपके पास आएंगे, भगवान के बारे में अगर आप बोलते हैं तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं आपके पास। और चीन में क्या होता है, अगर आप भगवान के बारे में बोलते हैं तो हजारों की संख्या में लोग दूर जाते हैं, भागते हैं, क्योंकि भगवान को नहीं मानते। अगर आप भगवान की बात बोलेंगे तो लोग जो है नहीं सुनेंगे। लेकिन वहां पर भी हरि नाम सफल हुआ, वहां भी हरि नाम सफल हुआ। कैसे सफल हुआ, उनको बुलाया तो गिरधारी स्वामी बता रहे थे कि उनको हम लोग बुलाते थे तो उनको शुरू में कुछ आसन सिखाते थे, आसन सिखाते थे है ना, क्या बता करके कि देखो इनसे आपका जो है शरीर स्वस्थ होगा, तो मानते हाँ ये ठीक है, ये सिखाओ। तो आसन कुछ सिखाया, उसके बाद फिर ये मंत्र सिखाया, ये 16 नाम का मंत्र सिखाया। तो ये भगवान का नाम नहीं बतलाया, ये मंत्र बताया कि ये मंत्र है जो कि आपके दिमाग के तनाव को दूर करता है। तो उन्होंने उसको माना कि हाँ ये ठीक है, नाम नहीं कहा कि भगवान का नाम है, ये क्या कहा कि ये मंत्र आपके दिमाग के तनाव को दूर करेगा है ना। तो उन्होंने इस मंत्र को ले लिया है ना, इस तरह से मंत्र सिखाया उनको, कुछ आसन सिखाए शरीर को स्वस्थ करने के लिए, और ये मंत्र सिखाया दिमाग के तनाव को दूर करने के लिए है ना। तो मंत्र का जाप करने लगे, और जब मंत्र का जाप करने लगे उनकी चेतना शुद्ध हुई तो फिर भगवद गीता की शिक्षाएं उनको दी गई, उन्होंने स्वीकार किया और वो भक्त बने। हरि बोल। तो चूंकि कलयुग में भविष्यवाणी की गई है हरे नाम है केवलम, कि केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम ही गति, अन्यथा गति नहीं है। तो जहां लोग महा नास्तिक हैं, महा असुर हैं, मतलब पूरे असुर, वे लोग भी इस हरि नाम को स्वीकार करते हैं, भगवान को नहीं मानते है ना। ये उसी प्रकार से है जैसे कि रत्नाकर नाम के डाकू को नारद जी ने कहा था मरा मरा बोलने के लिए, रत्नाकर नाम के डाकू को नारद जी ने कहा था कि तुम मरा मरा बोलो, क्यों मरा मरा बोलो, राम राम बोलने के लिए क्यों नहीं कहा है, कौन बताएगा, राम राम बोलने के लिए क्यों नहीं कहा है, बोल नहीं सकते थे, बोल सकते थे, क्यों नहीं बोल सकते है, क्यों नहीं बोल सकते, बड़े से बड़े पापी भी जो है उतना पाप नहीं कर सकते हैं जितना इस नाम में पाप दूर करने की शक्ति है, ये तो पापियों के लिए है ये है, तो क्यों नहीं बोल सकते ना, बोल सकते थे, लेकिन चूंकि वे जो है भगवान को नहीं मानते थे तो अपराध करेंगे, नाम का अपराध करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा था कि नाम मत लो तुम, ये मंत्र जप करो, मरा 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 मंत्र जप करो, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, ये मंत्र बन जाता है, ये नाम नहीं होता है। हाँ, अगर नाम कहें तो इसको नामाभास कहा जाता है, नाम का आभास है ये शुद्ध नाम नहीं है। जब मरा मरा जब नारद जी ने कहा तो ये कोई नाम नहीं था, ये क्या था, मंत्र था, कुछ शब्द ध्वनि थी जिसको कानों में सुनना है, मरा 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 मरा, वो राम राम तो निकल रहा है लेकिन अब ये नाम नहीं है बल्कि क्या है, ये मंत्र है, ये नाम नहीं है। अगर नाम कहेंगे तो नाम का आभास इसको कहा जा सकता है, शुद्ध नाम नहीं है, शुद्ध नाम नहीं है, है? जैसे आपका नाम क्या है, मुकुंद माधव, मुकुंद माधव है ना, अब इनका नाम मुकुंद माधव है ना। तो मुकुंद माधव मैं जब नाम लेता हूँ तो मेरे दिमाग में इनका चित्र भी आता है, मुकुंद माधव इनका व्यक्तित्व भी मेरे दिमाग में आता है कि मुकुंद माधव का कैसा स्वभाव है और कैसे मेरे इनके साथ संबंध है। जब मैं मुकुंद माधव बोलता हूँ तो इनका पूरा जो चित्र है, इनका चेहरा और इनका स्वभाव, इनका व्यक्तित्व, वो सब मेरे दिमाग में आता है, मुकुंद माधव। ये क्या है, शुद्ध नाम, मैं इनका नाम ले रहा हूँ अभी, शुद्ध नाम है, ठीक है। लेकिन अगर कोई शब्द आप बोल रहे हैं जिसका कुछ अर्थ आप नहीं जानते हैं, हैं, उसको आप जो है केवल बोल रहे हैं मुकुंद माधव जैसे बोल रहे हैं, हैं, तो ये फिर ये मंत्र हो गया या नामाभास हो गया, आप समझ रहे। तो मरा मरा जब नारद जी ने कहा था कि तुम बोलो तो ये नामाभास था, है ना। और अगर बोलते राम राम बोलो, ये भगवान का नाम है, परमेश्वर राम का नाम है, हैं, और उनकी श्रद्धा नहीं है परमेश्वर में, हैं, तो अश्रद्धालु को नाम की महिमा को उपदेश देना तो ये क्या हो जाता है, अपराध हो जाता है, तो फिर वो नाम का अपराध होता है, आप समझ रहे। रत्नाकर डाकू को उन्होंने राम राम बोलने के लिए क्यों नहीं कहा, क्योंकि उनकी भगवान में श्रद्धा नहीं थी। तो अगर वो राम राम बोलते तो क्या होता, ये नाम का अपराध होता। तो नाम के अपराध से बचाने के लिए नारद जी ने उनको क्या बोला, मरा मरा बोलो, इससे ये भी शुद्ध नाम नहीं है लेकिन नामाभास, ये नाम अपराध से ज्यादा अच्छा है, आप समझ रहे। नाम अपराध से ज्यादा अच्छा है नामाभास, जिसमें अपराध नहीं होता, लेकिन शुद्ध नाम तो नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत शक्ति है। नामाभास में भी शुद्ध नाम के बराबर शक्ति है, कुछ मामलों में शुद्ध नाम के बराबर शक्ति है। जैसे अजामिल ने जब नारायण बोला था अपने पुत्र के लिए तो शुद्ध नाम नहीं था, शुद्ध नाम नहीं था। अपने पुत्र को जब नारायण बोल रहा है तो ये शुद्ध नाम नहीं था, क्या था, ये नामाभास था। अब वो तो अपने पुत्र को बोला है, है? तो पुत्र का तो शुद्ध नाम बोल रहा है लेकिन भगवान का वो शुद्ध नाम नहीं था, समझ रहे हैं। अपने पुत्र को जब नारायण बोल रहा था तो अपने पुत्र का शुद्ध नाम बोल रहा था लेकिन नारायण का शुद्ध नाम नहीं था, वो नारायण का वो नामाभास था, है ना। तो नामाभास में इतनी शक्ति है कि वो संकट से छूट गया, उसकी संकट से रक्षा हो गई। यमदूत आए थे लेने के लिए तो नारायण नामाभास के द्वारा, नारायण तो नहीं आए स्वयं, तो शुद्ध नाम नहीं था, आप समझ रहे। शुद्ध नाम नहीं था तो भगवान नारायण उसकी रक्षा के लिए नहीं आए, लेकिन भगवान नारायण के दूत आ गए उसकी रक्षा के लिए और उसकी रक्षा हो गई। तो नामाभास में भी क्या हुआ, संकट से छुटकारा मिल गया उसको, संकट से रक्षा हो गई, नरक में जाने से रक्षा हो गई, है ना। द्रौपदी ने जब कृष्ण पुकारा था, है? संकट में कृष्ण का नाम लिया था, ये शुद्ध नाम था, शुद्ध नाम था क्योंकि उसके कृष्ण के साथ संबंध थे, कृष्ण से बातें भी करती थी, कृष्ण आते थे मिलते थे, हाँ वो कृष्ण का पूरा स्वभाव और उनका रूप, हाँ उनके गुण, उनकी लीलाएं, हाँ वो सब उस नाम में उसके आते थे, उसके दिमाग में सब कुछ आता था। तो द्रौपदी ने जब कृष्ण का नाम पुकारा था, द्रौपदी ने जब कृष्ण का नाम पुकारा था तो वो शुद्ध नाम था, तो उसकी भी रक्षा हुई संकट से। तो जहाँ तक संकट से रक्षा की बात है, शुद्ध नाम में और नामाभास में कोई अंतर नहीं। लेकिन शुद्ध नाम लिया था द्रौपदी ने तो स्वयं कृष्ण आए थे रक्षा करने के लिए द्रौपदी की। द्रौपदी रक्षा के लिए स्वयं कृष्ण आए थे, कृष्ण उसके वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए थे, द्रौपदी के शरीर में वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए कृष्ण, है ना। लेकिन अजामिल ने जब नाम लिया था नामाभास नारायण, तो शुद्ध नाम नहीं था, तो भगवान नारायण रक्षा करने के लिए नहीं आए, लेकिन नारायण के दूत आए, उन्होंने रक्षा की और यमदूतों से बातचीत की, यमदूतों को भगाया और इस तरह से अजामिल को नामाभास के द्वारा क्या प्राप्त हुआ, भक्तों का संग प्राप्त हुआ, भक्तों का संग प्राप्त हुआ, उसकी चेतना शुद्ध हुई और उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने कितने पाप किए, उसको बहुत पश्चाताप हुआ और उसने फिर तुरंत ही पाप कर्म छोड़ दिए, हरिद्वार में आया है? और वो जो है एक मंदिर में उसने नाम का अभ्यास किया और नाम भाष से वो शुद्ध नाम की स्थिति तक पहुंचा। तो मैं ये बताना चाहता था कि नामाभास में जो है ये शक्ति है। तो ये जो है जब हम हरे कृष्ण मंत्र जब देते हैं लोगों को, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, तो हम इसमें कुछ नाम की महिमा नहीं बताते। तो जो नाम का अपराध है, नवा अपराध यही है कि अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना। तो हम नाम की महिमा नहीं बताते, हम नाम का उपदेश नहीं देते, हम मंत्र का उपदेश देते हैं कि इस मंत्र का आप जाप करिए, इस मंत्र का जाप करिए, है ना। हाँ ये कोई नाम नहीं है, ये मंत्र है, मंत्र का जाप करिए, इसको केवल आप कानों से सुनिए और आप मुख से बोलिए, ये मंत्र है, है ना। इससे क्या होता है, इससे बहुत रक्षा होती है, बहुत बड़ी रक्षा होती है ना। तो नामाभास, इसको नामाभास बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इति षोडशकम् नामनाम कली कलमश नाशनम नादा परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। तो इससे बढ़कर के और कोई उपाय समस्त वेदों में नहीं है। कोई व्यक्ति कहता है मैं धर्म को नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता, है ना, मैं गीता को नहीं मानता, फिर भी हम उसको ये नाम दे सकते हैं क्या, आप केवल नाम, ये नाम जो है हम किस रूप में देते हैं, मंत्र के रूप में देते हैं कि मंत्र है ये, है ना। इसमें बताया गया है पवित्र नामों का जप और कीर्तन कलयुग का युग धर्म है, इस कीर्तन की महिमा का पूरी तरह बखान करना संभव नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को इन पवित्र नामों का अधिक से अधिक उच्चारण करना चाहिए। भगवान के नामों का उच्चारण दो प्रकार से होता है, एक तो उच्च स्वर से प्रायः मृदंग और करताल के साथ जिसे कीर्तन कहते हैं, तथा दूसरा जप जो धीमे स्वर में होता है ताकि स्वयं को सुनाई दे सके। तो दो प्रकार से इसका उच्चारण होता है, बताया गया है दो प्रकार से उच्चारण हो रहा है ना। तो पहले प्रकार से उच्चारण क्या होता है, कीर्तन होता है मृदंग और करताल के साथ, है ना। तो जब मैं आया था तो यहाँ कीर्तन ही चल रहा था, बड़ा अद्भुत दृश्य था, देखने लायक था, बड़ा दिव्य वातावरण था, मृदंग करताल के साथ में कीर्तन हो रहा था और कितना मतलब लोग जो है नृत्य कर रहे थे। तो एक कीर्तन इस प्रकार से होता है ना, ये बहुत शक्तिशाली है। लेकिन दूसरा उच्चारण क्या होता है, जप, जो व्यक्तिगत रूप में होता है। तो ये जो जप है जो व्यक्तिगत रूप में किया जाता है ना, ये बहुत शक्तिशाली है और बहुत सुलभ है, सुविधाजनक है, क्योंकि कीर्तन के लिए मृदंग करताल की जरूरत है और बहुत से भक्तों की आवश्यकता है, माइक की भी जरूरत पड़ती है, माइक की जरूरत है, करताल की जरूरत है, मृदंग की जरूरत है और बहुत से भक्तों की आवश्यकता है। तो ये कीर्तन है ना, तो ये एक तो ये विधि है, लेकिन दूसरी विधि क्या है, जप करने की, कैसे, माला पर जप करने की विधि है ना। तो हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों के गले में आप देखते हैं कि एक थैली होती है ना, और थैली में माला होती है, माला में 108 मनके होते हैं, उन मनकों पर जप करते हैं। जब धीमे स्वर में होता है ताकि स्वयं को सुनाई दे सके। कीर्तन करना सरल है, भक्तों के समूह में एक व्यक्ति कीर्तन का मुखिया होता है, अर्थात वो पहले गाता है तथा अन्य भक्त उसका अनुसरण करते हैं, अर्थात उन्हीं शब्दों को उसी लय में इकट्ठे गाते हैं। साधारणतः कीर्तन सरल लय में गाया जाता है ताकि प्रत्येक भक्त उनको आसानी से दोहरा सके। जैसा कि पहले भी कहा गया है, महामंत्र सबसे महत्वपूर्ण है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का अर्थ है, हे कृष्ण, हे कृष्ण की शक्ति कृपा करके मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हरे शब्द श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हरा का संबोधन है। कृष्ण तथा राम सर्वाकर्षक आनंद के सागर परम भगवान के प्रमुख नाम है। तो इस हरे कृष्ण मंत्र में हरे ये शब्द कितने बार आता है, 8 बार आता है, 8 बार आता है ना। तो ये हरे शब्द ये कैसे बनता है, हरा से, हरा को संस्कृत में जब हम पुकारते हैं तो हरे होता है, हिंदी में ऐसा नहीं है या इंग्लिश में ऐसा नहीं है, किसी दूसरी भाषा में ऐसा नहीं है, हैं? किसी को अगर हम पुकारते हैं, हैं? अगर किसी लड़की का नाम हरा है तो हम उसको हरा ही बोलेंगे, लेकिन संस्कृत में कोई हरा अगर लड़की है तो उसको क्या बोलेंगे, हरे। ये विधि है संस्कृत भाषा में, हैं? सीता, सीता को क्या बोलें, सीते, अगर पुकारते हैं तो सीते, राधा को पुकारते हैं तो राधे, है ना, लेकिन कृष्ण को पुकारते हैं तो कृष्ण, उसमें परिवर्तन नहीं होता, राम को पुकारते हैं तो राम, इसमें परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कुछ किसी किसी नाम में परिवर्तन होता है, किसी नाम में परिवर्तन नहीं होता है ना। तो जब हरे पुकारते हैं तो भगवान की शक्ति को पुकारते हैं, और कृष्ण और राम ये भगवान के नाम हैं। कृष्ण का मतलब सर्व आकर्षक और राम का मतलब है आनंद के सागर, तो ये जो है नाम है। तो नाम के साथ में हम हरा उनकी शक्ति का उच्चारण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार हमें महामंत्र का अधिक से अधिक कीर्तन करना चाहिए, फिर भी महामंत्र के कीर्तन से पूर्व हमें शीला प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र और पंचतत्व मंत्र, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद का कीर्तन करना चाहिए ना। तो ये जो पंचतत्व मंत्र है ये हमेशा कीर्तन के पहले गाया जाता है ना। अगर हरे कृष्ण मंत्र का हमें लंबा कीर्तन करना है तो 3 बार भी गाया जाता है, पंचतत्व मंत्र 3 बार भी गाया जाता है, 1 बार गा सकते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार गा सकते हैं ना, 3 बार से ज़्यादा नहीं गाते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत शक्तिशाली है ये पंचतत्व मंत्र, बहुत शक्तिशाली मंत्र है ना, इसलिए 3 बार से ज़्यादा नहीं गाते हैं। 3 बार से ज़्यादा क्यों नहीं गाते, अगर बहुत शक्तिशाली तो ज़्यादा हाँ शक्ति मिलेगी, है ना। फिर हम लोग क्यों नहीं गाते हैं? फिर चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है क्या कि हरे कृष्ण मंत्र का ही कीर्तन करना। इसलिए पंचतत्व मंत्र ज्यादा शक्तिशाली होने की पर भी इसको तीन बार से ज्यादा नहीं गाते हैं, है ना। लेकिन ये मंत्र जब हम गाते हैं तो हमको अपराधों से छुड़ा देता है। हरे कृष्ण मंत्र में जो अपराध होते हैं, नाम के अपराध होते हैं, उनसे हमें छुड़ाता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य ये पंचतत्व मंत्र है, आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाइए, है ना। जिन लोगों को नहीं आता है वो किसी से लिखवा करके अपने पास रख लें। इस पुस्तक में तो ये मंत्र भी है और अन्य अन्यत्र कई जगह मिल जाएगा पंचतत्व मंत्र। जब तक याद ना हो तब तक अपने हाथ से या किसी के हाथ से लिखवा करके अपने पास रख लीजिए। माला पर जप करना है तो भी हर माला के पहले एक बार पंचतत्व मंत्र बोलना है। आप अपनी जेब से निकालिए पर्चा और उसको पढ़ करके एक बार बोलिए, इसके बाद महामंत्र की माला शुरू करिए। या आपको कीर्तन करना है तो जेब से पर्चा निकालिए और उसको उसका कीर्तन करिए, उसके बाद हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करिए। श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके पार्षदों की कृपा प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र से पूर्व पंचतत्व मंत्र का कीर्तन किया जाता है, ताकि हम हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में होने वाले अपराधों से बच सकें। तो पंचतत्व मंत्र इसमें पांच नाम होते हैं, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र में 16 नाम होते हैं, लेकिन 16 नाम में केवल तीन ही बीज नाम हैं, हरा, कृष्ण और राम। लेकिन पंचतत्व मंत्र में 5 नाम हैं, है ना, इनको समझना है। अब हरे कृष्ण मंत्र का जो जप करना है, इसमें बताया गया है कृष्ण नाम महामंत्रेर यही ता स्वभाव, यही जपे तार कृष्णे उपजाए भाव। हरे कृष्ण मंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है किसका जप करने वाले का श्री कृष्ण के प्रति भाव तुरंत विकसित हो जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना प्रत्येक गंभीर कृष्ण भक्ति के लिए अनिवार्य है। हरे कृष्ण मंत्र का जप करना प्रत्येक गंभीर कृष्ण भक्ति के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब जरूरी है ना? इसके बिना काम नहीं चलेगा। प्रत्येक गंभीर कृष्ण भक्ति के लिए यह आवश्यक है। आपके गले में माला होना चाहिए ना, माला होना चाहिए। हम अन्य कार्यों में चाहे कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के लिए हमें प्रतिदिन कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के लिए आपको जरूर कुछ ना कुछ नियम बनाना है। कम से कम एक माला, कम से कम एक माला। एक माला में 108 बार हरे कृष्ण मंत्र की संख्या हो जाती है। अब अगर आप पूछें कि माला पर ही क्यों करें, बिना माला के भी कर सकते हैं, तो इसका क्या उत्तर है? हम कहते हैं भी कम से कम एक माला जप करो। आप कहते हैं कि माला पर क्यों है, ये सब झंझट क्यों है माला की, ये माला का बंधन क्यों हम लें, हम बिना माला के करेंगे, इसका क्या उत्तर है, कौन बताएगा? अगर आप कहते हैं कि हम तो बिना माला के करते हैं और हमेशा करते हैं, 24 घंटे करते हैं, हैं? तो क्या उत्तर है? अगर कोई कहता है कि नहीं 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 माला पर हम नहीं करते, हम बिना माला के करते रहते हैं, हमारा चलता रहता है, तो क्या उत्तर है? लोग बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि माला पर नहीं करते, बिना माला के हमारा चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है, इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर ये है कि आप बहुत बड़े धोखे में हैं। आप बहुत बड़े धोखे में हैं। और धोखा आप किससे खा रहे हैं? अपने मन से। आपका मन ही जो है आपको धोखा दे रहा है। ये आपका मन बहुत बड़ा शत्रु है। मन अगर आपने बस में नहीं किया तो इससे बड़ा और कोई शत्रु नहीं है। और यही मन अगर आपने बस में कर लिया है, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। आप सोचते हैं कि ये आपका जाप 24 घंटे चलता रहता है ना, तो आपका मन धोखा दे रहा है। और मन क्या कहता है कि हाँ मैं कर रहा हूं, और दुनिया के चक्कर लगाता है। आप समझ रहे? कोई नौकर है बदमाश, कोई बड़ा बदमाश नौकर है ना, आप इसको बैठा दिया भाई यहाँ बैठे रहना है और निगरानी करना। वो कहता हाँ यस सर, बोलता यस सर है ना, और भाग जाता है। बहुत बदमाश। तो आपका मन क्या है? आपका मन तो दुनिया के चक्कर लगा रहा है, और आप क्या सोच रहे हैं कि मन जो है मेरा 24 घंटे कर रहा है। आप समझ रहे? इसलिए कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मन जो है जब तक आपने बस में नहीं किया तब तक इसका कभी विश्वास नहीं करना। या आप कहें कि नहीं माला पर मैं क्यों जप करूं, जब मेरी श्रद्धा होगी तो मैं करूंगा, जब मेरे अंदर श्रद्धा होगा, भाव श्रद्धा की भावना होगी तो मैं करूंगा। ये माला पर जो है करना, और जब अपने अंदर श्रद्धा नहीं होती है तो फिर जो है वो करना ठीक नहीं है। तो क्या उत्तर है? हम कहते नहीं आपकी इच्छा हो या ना हो आप करो। माला पर आपका ये एक भार है जो कि आपको लेना है, कि आपको करना है। आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा नहीं है, आपको बुरा लग रहा है या आपको अच्छा लग रहा है, आपको करना है। लेकिन आप कहते नहीं नहीं नहीं, जब श्रद्धा होगी और प्रेम होगा, इच्छा होगी, मूड होगा तो करेंगे। तो इसका क्या उत्तर है? कौन बताएगा? जब हमारा मूड होगा, अच्छा मूड होगा तो करेंगे। अच्छे मूड में करना चाहिए ना, महामंत्र तो अच्छे मूड में करना चाहिए। जब खराब मूड होता है तो नहीं करना चाहिए। क्या विचार है? अगर आपका मूड नहीं है जब करने का और आप कर रहे हैं तो क्या अच्छा है? देखिए महामंत्र, ये दूसरे मंत्र में अगर आपकी श्रद्धा नहीं है और आप करते हैं तो उसका कोई फल नहीं है। अश्रद्धया हुतम दत्तम, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असत इति उचिते पार्थ न चा तत्पेतन है। श्रद्धा के बिना अश्रद्धया हुतम पार्थ, कोई हवन किया गया, अभी जप नहीं करना चाहिए आपको। अभी मैं प्रवचन अभी मैं बता रहा हूँ, इस समय जप नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। अश्रद्धया बिना श्रद्धा के जो हवन किया जाता है, जो दान दिया जाता है, जो तप किया जाता है, या जो भी कार्य किया जाता है, असत है, ना उसका फल इस जीवन में है ना अगले जीवन में। तो फिर महामंत्र के बारे में भी क्या यही बात है कि श्रद्धा नहीं है और आप करेंगे तो कोई फल नहीं होगा? नहीं, ये महामंत्र है, इसमें ये बात लागू नहीं होती। इस महामंत्र में ये बात लागू नहीं होती। आप समझ रहे? हरि बोल, हरि बोल। इसमें ये बात लागू नहीं होती कि आप की श्रद्धा नहीं है और आप करते हैं तो कोई फल नहीं होगा। निश्चित फल है। पद्म पुराण में लिखा है कि दो कार्य निश्चित रूप से फल देने वाले हैं। कलयुग में दो कार्य निश्चित रूप से फल देने वाले हैं, एक तो हरि नाम का उच्चारण, दूसरा गंगा स्नान। अब गंगा स्नान तो हमेशा नहीं हो सकता, हर जगह गंगा जी भी नहीं है गंगा स्नान, और जहाँ गंगा जी हैं भी तो वहाँ भी आप हर समय तो गंगा स्नान नहीं कर सकते। दिन में 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, कितने बार करेंगे, है ना? लेकिन ये जो नाम है ये जो है आप 24 घंटे कर सकते हैं और इसमें निश्चित फल है। विधि का पालन हो या ना हो, श्रद्धा हो या ना हो, इसमें निश्चित रूप से फल है। अपराध नहीं होना चाहिए, नाम के जो 10 अपराध हैं ये ना हो तो बाकी जो है मतलब कोई ऐसी मतलब चीज़ नहीं है कि श्रद्धा है नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जो है ये नाम जो है आप भार समझ के भी करते हैं तो इसमें भी लाभ है, आपका शुद्धिकरण है। इसलिए इस भार को आप लीजिए। अगर आपको लगता है कि हरे कृष्णा वालों ने मुझे कहाँ से इस चक्कर में फंसा दिया, अब हरे कृष्णा मुझे करना पड़ रहा है ना, ये भार समझ के भी आप करते हैं इसमें भी आपकी शुद्धि है और आप बहुत बड़े कष्ट से छूटेंगे। अगर आप इस नियम से बंध जाते हैं तो हजारों माया के बंधन से आप छूट जाएंगे, और नहीं तो ऐसे आप बंधे हैं, पहले से आप माया के बंधन में बहुत बंधे हुए हैं, कई प्रकार के बंधन हैं आपके ऊपर माया के, है ना। और आप कहते हैं कि एक और एक बंधन मैं क्यों लूं, हम कहते हैं एक और बंधन ले लो, इससे क्या होगा आप हजारों बंधन से छूटेंगे। आप तो कहते हैं सैकड़ों हजारों बंधन मेरे ऊपर पहले से हैं और एक नया बंधन मैं क्यों लूं, और हम कहते हैं इस नए बंधन को आप ले लो तो आप हजारों उन बंधनों से छूट जाएंगे माया के, जो माया के बंधन है एक बंधन को ले लो, आप समझ रहे हैं। हरिदास ठाकुर की कथा आती है चैतन्य चरितामृत में, तो उनका नियम था, नाम जप करने का नियम था, नाम संख्या पूर्वक जप करने का नियम था उनका, नाम की संख्या। आपने अगर नियम ले लिया कि नाम की संख्या करनी है तो आपकी चिंता हो जाती है, आपका भार हो जाता है, और रोज सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले आपके चिंता होती है कि मुझे नाम की संख्या पूरी करनी है। ये चिंता आपकी शुरू हो जाती है प्रत्येक दिन कि आपको नाम पूरा करना है, ये चिंता आपकी हो जाती है। इस चिंता से कितनी बड़ी रक्षा होती है। हरिदास ठाकुर के पास वेश्या आई, बहुत सुंदर वेश्या आई, और हरिदास ठाकुर से उसने सुझाव दिया कि देखो मैं आई हूं तुम्हारे पास, हैं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास आई हूं, बहुत अच्छा अवसर है, हैं इसका लाभ उठाओ। और हरिदास ठाकुर बोले कि बहुत अच्छा अवसर आपने दिया मुझे, हैं और आपकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, लेकिन आप बैठिए क्योंकि मेरी एक चिंता है। क्या? कि मेरी संख्या पूरी नहीं हुई है, मैं अपनी संख्या पूरी करूं। आप समझ रहे, इस संख्या के कारण उनकी रक्षा हुई, इससे एक शिक्षा मिलती है, इस बड़ी शिक्षा मिलती है कि आपकी अगर चिंता हो जाती है कि मुझे संख्या पूरी करनी है तो बहुत से बेकार के जो काम होते हैं जिनमें आप मतलब कई प्रकार के संकटों में फंसेंगे, हैं उनसे आपकी रक्षा हो जाती है, बड़े बड़े खतरों से रक्षा हो जाती है। हरि बोल। आपकी इच्छा होती है ये टीवी देखने की, क्लब में जाने की, फिल्म देखने की, कितनी कितनी इच्छाएं होती हैं, है ना, लेकिन आपकी चिंता हो गई कि मुझे पहले नाम करना है ना, तो पहले नाम तो कर लूं। अगर आपकी ये चिंता होगी मैं पहले नाम कर लूं, हाँ तो ये काम जो है बाकी दूसरे काम जो है बाद में होंगे। हाँ ऐसा नहीं है, बाकी बहुत से आवश्यक कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी चिंता बनी रहनी चाहिए कि जो अनावश्यक काम है ना, और आपके मन में आते हैं कि करूं करूं, इच्छा होती है करूं करूं, लेकिन वैसे आवश्यक नहीं है, तो आप उनको छोड़ करके आप ये नाम लेते हैं। आपका जो है इस तरह से समय आपका जो है आपका मिल जाता है, आपको मिल जाता है, जो समय को बर्बाद करने वाले बहुत से काम हैं उनसे आप बच जाते हैं। जब आपने नियम बनाया कि आपको इतनी संख्या पूरी करनी है, इतनी माला पूरी करनी है, तो वो नियम क्या है? वो नियम है कम से कम का, कि इतना मुझे कम से कम करना है, ज्यादा का नियम नहीं है, किससे ज्यादा नहीं करना है। नियम ये नहीं बनाना कि इससे ज्यादा मुझे नहीं करना है, नियम ये नहीं है। नियम है कम से कम का, कि कम, इससे कम नहीं करना है। हाँ, आपको ये नियम बनाना है, इन ज्यादा जितना समय मिले, फालतू में समय मिले तो आप करो, जब करो। तो इस तरह से जो है, हाँ, ये हरे कृष्ण आंदोलन के जो है, तब आप गंभीर भक्त कहलाएंगे, तब आप गंभीर भक्त कहलाएंगे, है ना। अब मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों में से, हरे कृष्ण महामंत्र की माला पर चाहे एक माला हो, कम से कम एक माला भी, कितने लोग जप करते हैं? हाथ उठाइए। बहुत कम है, आधे भी नहीं है, है ना। लेकिन हमारी आपसे प्रार्थना है कि जो बिल्कुल जप नहीं करते हैं, कम से कम एक माला का जप करें, ठीक है ना। तो हमारी प्रार्थना है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, ये हैंड माइक नहीं, हैंड माइक, हैंड माइक है नहीं है? अच्छा, और आगे आइए थोड़ा सा। सुना नहीं पड़ा। इनका प्रश्न है कि संख्या महत्वपूर्ण है या माला पर संख्या? नहीं, माला पर संख्या नहीं है, माला पर संख्या नहीं होती है। माला, देखिए, माला में जो है निश्चित संख्या होती है मनके की। माला जो आपके पास मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, कहीं से मिलेगी, 108 मनके होते हैं। हाँ, अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैंने अपना मोबाइल को बंद कर दिया है, आपके पास में मोबाइल हो अपना बंद कर दीजिए। इनका अच्छा प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि माला के बिना भी अगर मैं 108 की संख्या पूरी करूं तो उसमें क्या कमी है? देखिए, आप 108 की संख्या पूरी कर सकते हैं माला के बिना भी, लेकिन आपको वो गिनती करनी पड़ेगी, आप समझे, गिनती करनी पड़ेगी। बीच में फिर आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप हाथ में गिनती कर रहे हैं, फिर हाथ से कुछ और काम करेंगे तो फिर वो गिनती छूट जाएगी। लेकिन माला पर क्या होता है, देखिए, मैं अभी माला कर रहा हूँ और मैंने माला को बाहर निकाला हुआ है, माला के बीच में भी आप छोड़ सकते हैं, और जब आप शुरू करेंगे तो वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर आपने छोड़ा है। ये थैली जो होती है, इसमें आप माला को वहीं बाहर निकाल सकते हैं जहाँ पर आप कर रहे हैं, आप समझ रहे। माला को जहाँ आपने बाहर निकाला है, अब वहाँ से आपको जब करना है तो हो सकता है एक दो मन के आगे पीछे हो जाएं, तो उसकी कोई बात नहीं है। 108 जो मन के होते हैं, उसमें 8 एक्स्ट्रा हैं, वो 100 ही माने जाते हैं, आप समझ रहे। तो माला पर ये सुविधा है, माला पर ये सुविधा है कि आपकी 108 की संख्या पूरी हो जाती है, आपको पता चलता है कि माला पूरी हो गई, जब वो सबसे बड़ा मन का आपके उंगली में आता है, आप नहीं देख रहे हैं लेकिन आपके टटोलने से पता चल जाता है कि वो बड़ा मन का आ गया है, आपकी माला पूरी हो गई। और जब माला पूरी हो गई तो आप ये काउंटर में खिसका लेते हैं कि मेरी एक माला हो गई। इस तरह से 16 माला आप करते हैं, तो इसमें आपको बहुत सुविधा होती है। इनका प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि माला पर तो करते ही हैं, माला के बिना भी, हाँ, माला के बिना आप करो, लेकिन माला पर जो है आपकी कम से कम की संख्या पूरी होनी चाहिए, उसके ऊपर आप जो है बिना माला के भी कर सकते हैं। लेकिन माला पर भी करो, अगर माला पर है, माला है तो आप माला पर करो और देखो कितनी माला हुई, वो भी देख सकते हो। इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि जो आपकी संख्या निश्चित आपने की है, अगर वो पूरी नहीं हुई, जिस दिन पूरी नहीं हुई, तो उसको अगले दिन पूरी करना है, ठीक है। इसके अलावा ये भी है, अगर कई दिन तक आपने नहीं किया, कुछ ऐसे कारण बन गए कई दिनों से आपने माला नहीं की है, तो उतने दिनों की माला भी आपको पूरी करनी है। आपका ही हिसाब आपको रखना पड़ेगा, आप खुद ही इसके अकाउंटेंट बने, आपको जो हिसाब रखना है वो कम से कम का है, लेकिन ज़्यादा किया है उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन आपने कम किया है, आज आपने एक भी माला नहीं की और आपका नियम है 16 माला जब करने का, तो आपको 16 भी कवर करनी, ठीक है ना। तो ये आपका जो है नियम। हाँ बोलिए, किसी भी टाइम कर सकते हैं। हाँ किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। वैसे तो सबसे अच्छा होता है कि आप स्नान करके आप जो है ब्राह्म मुहूर्त में जब करें, सवेरे जब करें, हाँ वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अभ्यास आपको करना चाहिए हर समय करने का, हर समय आप जो है कर सकते हैं। आप स्नान के पहले भी कर सकते हैं, स्नान के बाद भी कर सकते हैं, भोजन के पहले भी, भोजन के बाद भी, सोने के पहले भी, सोने के बाद भी। लेकिन हाँ, माला को आप टॉयलेट में नहीं ले जा सकते, है ना। लेकिन आप जो है स्नान के पहले भी अगर आपके हाथ साफ हैं तो आप कर सकते हैं, बिस्तर में बैठ के भी आप कर सकते हैं, अगर आवश्यकता पड़े तो आप लेट के भी कर सकते हैं। ये भी बताया गया है, सुखम सयाना निलये निजेपी नामानि विष्णु और प्रबदंती मर्त्या ते निश्चितम तन्मयताम ब्रजंती गोविंद दामोदर माधवेती। कि कोई व्यक्ति सुखपूर्वक अपने बिस्तर में पड़े पड़े भी अगर नाम लेता है तो वो भी तन्मयता प्राप्त करता है। लेकिन ये नियम नहीं बनाना है, लेकिन ये नियम नहीं बनाना कि मैं लेट करके करूँगा। अगर आप बैठ सकते हैं तो आप लेट के ना करिए, लेकिन अगर आप बैठ नहीं सकते हैं और आपको थकान है, विश्राम करना है, तो आप जब करते करते सो जाएं, हैं, ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है। आप जो है, लेकिन आपकी जो संख्या है, अगर माला छूट गई है, हैं, आपको पता नहीं कहाँ छूटी माला, तो आप दोबारा शुरू करो माला को, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप लेट के करो, कि लेट करके करेंगे तो आपको नींद ही आएगी। आप बैठ के करो, बैठ करके नींद आती है तो आप खड़े होके करो, चलते फिरते करो, तो विधि तो ये है कि अगर नींद आ रही है तो आप चलते फिरते करो। लेकिन अगर बहुत थकान है और आपको विश्राम करना है तो आप लेट के भी कर सकते हैं, है ना। और अगर आप बीमार हैं, आप बैठ नहीं सकते हैं, तो भी आप लेट के कर सकते हैं, किसी तरह से भी आपको करना है, ठीक है ना। हाँ जी, आपका प्रश्न। मन को कैसे बस में कर सकते हैं, इनका प्रश्न है कि मन को कैसे बस में कर सकते हैं। देखिए, मन को बस में करने का बड़ा अच्छा तरीका यह है कि ये नाम आपके मुंह से निकलता है और कान में जाता है, तो मन जो है आपके मुंह और कान के बीच में रहेगा। आपको ये नाम सुनना है, अगर आप ये नाम सुनते हैं तो ये जो शब्द ध्वनि है ये आपके मन में जाती है, आपके मन को पवित्र करती है। और जब मन पवित्र हो जाता है तो फिर इसको बस में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फिर पवित्र चीज में ही लगेगा। मन को बस में करने की तब जरूरत पड़ती है जब ये मन अशुद्ध कार्यों में लगता है और आप इसको शुद्ध कार्यों में लगाना चाहते हैं। तो जब तक मन आपका अशुद्ध कार्यों में लगा है और आप शुद्ध कार्य में लगाना चाहते हैं तो आप इसको बस में करिए। तो मन जहाँ जाता है आप उसको खींच करके इस नाम में आप लगाइए, सुनने में लगाइए। यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियम्य तत् आत्मनैव शमनयेत्। तो जहाँ जहाँ भी मन जाता है, मन तो चंचल है, अस्थिर है, वहाँ वहाँ से खींच करके आत्मा में लगाना। तो यहाँ पर आत्मा का मतलब नाम, ये हरे कृष्ण मंत्र ही आत्मा है। तो नाम में अगर आप लगाते हैं, इसको सुनने में लगाते हैं, तो ये आपका जो मन है ये बस में हो रहा है, और बस में होने के साथ साथ पवित्र भी हो रहा है, और जब पवित्र हो जाता है मन तो ये फिर अच्छा लगने लगता है, फिर आपको नाम अच्छा लगने लगता है, ठीक है ना। जब मन पवित्र होता है तो फिर आपको नाम अच्छा लगता है, फिर नाम से आगे फिर आप भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान का संदेश, भगवद गीता, आप इनको फिर आप समझेंगे, आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, सीखेंगे। तो ये विषय ये है, जो भगवद गीता का विषय है, प्रभुपाद के ग्रंथों में जो संदेश दिया गया है, वो फिर आप जो है समझेंगे, जानेंगे, लोगों को बताएंगे। हाँ जी, इनका प्रश्न है, इनका प्रश्न है, खैर आज के विषय से हट करके है, लेकिन फिर भी इनका प्रश्न पर हम विचार करेंगे। इनका प्रश्न है कि गोलोक धाम में जो कृष्ण रहते हैं, तो इस संसार में जब अवतार लेते हैं तो क्या वही कृष्ण है या कुछ उनसे कम है, है ना। देखिए, जब कृष्ण कहते हैं गीता में, हैं कृष्ण गीता में कहते हैं, हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, है कि जब जब धर्म की हानि होती है, हैं तो मैं आता हूँ पृथ्वी में। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गोलोक धाम में जो कृष्ण रहते हैं वो इस संसार में नहीं आ सकते। बहुत से मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं, या जैसे मुसलमानों का जो विश्वास है, तो उनके धर्म ग्रंथों में ये बात नहीं आती है। उनके धर्म ग्रंथ जो कुरान है उसमें जो है कुछ मोटी मोटी बातें बताई गई हैं, तो उसमें ज़्यादा विवरण नहीं दिया गया। तो उसमें ये बताया गया है कि जन्नत में खुदा हैं, और वो जो है वहाँ पर सोने के सिंहासन पर बैठते हैं, कुछ मोटी मोटी बातें बताई गई। तो फिर उनका ये मानना है कि वो जो जन्नत में खुदा रहते हैं, उनको इस संसार में आने की क्या ज़रूरत है, वो क्यों आएंगे इस संसार में। उनका ये कहना है कि इतना संसार गंदा है, इतना खराब है, और वो खुदा जन्नत में है, वो इतने शुद्ध हैं, इतने पवित्र हैं, वो स्थान भी इतना पवित्र है, वो इस अशुद्ध स्थान में क्यों आएंगे। उनका एक जो है सामान्य तर्क होता है कि इस स्थान में क्यों आएंगे, है ना। लेकिन प्रभुपाद उत्तर देते हैं कि उनके लिए क्या कोई मनाही है, हैं कि वो ना आए, हैं क्या उनके लिए कोई मनाही है कि वो नहीं आएंगे, है ना। हम लोग जो है उनके ही अंश हैं, जैसे पिता का अपने पुत्र के साथ संबंध होता है, पुत्र भूल जाए और पुत्र खो जाए तो फिर पिता उसकी खबर लेता है, अपने पुत्र की खबर लेता है, उसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं। इसलिए भगवान अपना संदेश भेजते हैं और अपना संदेश स्वयं भी आकर के देते हैं भगवद गीता में। तो जिन भगवान ने भगवद गीता में अपना संदेश दिया है, तो वे भगवान गोलोक धाम से ही आए, आप समझ रहे। तो उनके कुरान में ये सब बातें नहीं है, जिससे कि मतलब कोई इतना समझ पाए भगवान के अवतारों का, उसमें ऐसा विवरण नहीं दिया जाता, क्योंकि उनके जो धर्म ग्रंथ हैं वो बहुत मोटी मोटी बातें इसमें बताई गई हैं। उसमें ये भी नहीं बताया गया कि हमारा दोबारा जन्म होता है, आप समझे। उसमें तो ये बताया गया है कि एक बार आप चले गए, इस मरने के बाद या तो जन्नत में जाओगे या जहन्नम में जाओगे, तो हमेशा रहोगे वहीं, आप समझे। तो उसमें ज़्यादा मतलब संतुष्टि नहीं होती व्यक्ति को, कि जीवन में अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे, तो हमेशा जहन्नम में रहेंगे, हमेशा नरक में रहेंगे। अगर अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, तो खुदा के पास रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो उसमें ज़्यादा विवरण है ही नहीं, उसमें ज़्यादा विवरण नहीं है कि वो जो है कुछ और बताए। जैसे हमारे ग्रंथों में है वैकुंठ अलग है, जहाँ जाके कोई नहीं वापस आता है वहाँ भगवान है, और जो स्वर्ग है वहाँ तो पुण्यों के फल भोग करके वापस आते हैं। तो ये सब बातें नहीं है, उनके ग्रंथों में इतना विवरण नहीं मिलता, इसलिए संतुष्टि नहीं होती व्यक्ति, सामान्य मस्तिष्क को संतुष्टि नहीं होती इसमें। ठीक है ना, फिर भी वो भी उनके पास भी संदेश आया है और वो सही भी है, कुछ हद तक सही भी है, लेकिन यही है कि वो पूरा पूरा उसमें जो है विवरण नहीं मिलता। ठीक है, अब और क्या काम, कुछ क्या प्रोग्राम है, और कुछ प्रोग्राम है? ओम, देखिए ओम गीता में भगवान कहते हैं प्रणवः सर्व वेदेषु, कि समस्त वेदों में मैं ओम हूँ। सतयुग में जो वेद होते हैं वो केवल इस ओम में ही होते हैं, लोग ओम का उच्चारण करते हैं, उसी से वेदों का पूरा तात्पर्य जान लेते हैं। ओम गीता में भगवान कहते हैं ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम मनुस्मरण, ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ कोई व्यक्ति इसके अर्थ स्वरूप मेरा चिंतन करता है। तो ओम में भी जो है भगवान विष्णु का या कृष्ण का या राम का चिंतन करना होता है। ओम भी भगवान के अनेक नामों में से एक नाम है ना। लेकिन ये जो हरे कृष्ण मंत्र है इसमें ओम शामिल है, इसलिए आपको ओम का जप करने की अलग से जरूरत नहीं है। इस हरे कृष्ण मंत्र में भगवान के मुख्य नाम है, ओम जो है भगवान का एक निर्विशेष नाम है, निर्विशेष नाम है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं ए आदमी, आप उसका नाम नहीं जानते, आप बोलते हैं ए भैया, बोलते हैं ना ए भैया, क्या बोलते हैं जेंटलमैन, ए भैया बोलते हैं ना, तो आप उससे ज़्यादा परिचित नहीं है तो आप कुछ ऐसे नाम बोलते हैं। तो ये ओम जो उच्चारण है भगवान के लिए उसी प्रकार का निर्विशेष नाम है ये, ठीक है ना। लेकिन जब आप जानते हैं कि भगवान का नाम है कृष्ण है, उनका कृष्ण नाम है, तो इसमें क्या है, ये एक व्यक्तिगत नाम है भगवान का, ठीक है ना। इसमें भगवान का रूप है, उनके गुण हैं, उनकी लीलाएँ हैं, तो सब कुछ इसमें शामिल हैं। तो ओम में जो है भगवान का जो है नाम रूप गुण लीला ये सब नहीं है, एक निर्विशेष आवाज है। जैसे हम बोलते ए ए ए बोलते ना किसी को, आप नाम नहीं जानते, ए भाई ए भाई, ए ए ए बोलते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, जब ज़्यादा परिचय नहीं होता किसी से तो आप ऐसे ही बोलते हैं ना, जब आपका ज़्यादा परिचय होता है तो उसमें फिर ज़्यादा विशेषताएं होती हैं, है ना। तो भगवान के फिर बहुत से नाम हैं, उनकी लीलाओं के आधार पर बहुत से नाम बने हैं, उनके गुणों के आधार पर भगवान के बहुत से नाम बने हैं, तो वो विशेष हैं। ओम निर्विशेष नाम है, वेदों में निर्विशेष ये वर्णन है भगवान का, ठीक है ना। हाँ जी,
डबल प्रमोशन करने के लिए कुंड में बदलने के लिए आपने बताया था कुंडा एक प्रतिदिन का है, इसे मैं पापी हूँ, गंगा में नहा कीर्तन करे तो क्या कुंड में डबल प्रमोशन मिलेगा उसका?
देखिए इस भौतिक संसार में तो हर कोई पापी है, कोई मतलब आप अपने को पापी कहता है तो कोई नई बात नहीं है कि आप अपने को पापी कहते हैं, पापों के कारण ही आपको भौतिक शरीर मिला है। हर व्यक्ति पापी है ना, हमें पापों से शुद्ध होना है ना, इसके लिए हमें नाम के अपराधों से बचना है। जब हम नाम लेते हैं तो नाम के अपराधों से बचना है। नाम के 10 प्रकार के अपराध होते हैं जो डेली यहाँ भी बोले जाते होंगे, डेली बोले जाते हैं नाम के 10 अपराध, तो नाम के अपराध जरूर बोलिए जिससे कि हम अपराधों से बचें। तो नाम जो है हमारे पापों को नष्ट कर देता है, लेकिन अगर आप अपराध करते हैं तो फिर वो नाम की शक्ति जो है फिर उतनी नहीं रहती, नाम की शक्ति घट जाती है, इसलिए अपराधों से बचना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अभी कुछ सूचनाएँ देंगे आपको, आप लोग बैठे रहिए।
सीख लाएंगे तो अच्छा रहता है।
सेल्फ को बुक शॉप से ले जाना
वो सारा पूरा हाँ
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो शास्त्र कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कह लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो जो साधु का संग होता है वो क्या करता है सब प्रकार से हमारी सिद्धि हम सब सिद्धि को प्राप्त करते हैं। लव मात्र साधु संग लव इसको कहते हैं जो सेकंड सेकंड से भी कम होता है। लव लव जो है सेकंड से भी कम होता है। तो इस तरीके से हमारे बीच में परम आदरणीय परम पूजनीय गीता मित्र दास गीता मित्र प्रभु जी दिल्ली मंदिर से यहाँ हम सभी पर कृपा करने के लिए आए हैं। और हमारे को क्या करना चाहिए उनकी बातों को श्रवण तो किया ही है लेकिन श्रवण के बाद दूसरा क्या होता है मनन भी करना है। घर जाकर के जो भी हमने अभी श्रवण किया है उसका मनन करना है तभी हम उसको पा भी सकते हैं। और दूसरा क्या है अब साधु संग अभी तो आपने किया और भी अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो प्रभु जी के द्वारा श्री भगवान ने कहा ये पुस्तक जो भगवत गीता यथारूप है उसी के एक एक श्लोक को बड़ी सुंदरता से इसको समझाया गया है। तो आप प्रभु जी को अपने साथ अपने घर भी ले जा सकते हैं इस पुस्तक के माध्यम से वो आपके घर में जा सकते हैं और आपको सब प्रकार से इस पुस्तक से समझा सकते हैं। तो ये पुस्तक है श्री भगवान ने कहा चतुर्खंड का उतरा
अभी तो, नई बुक आई है हा? अभी जो नई छापी है तुरंत
अभी
अभी नई आई है
अभी ये नई आई है इससे तो ये भी है और इससे पहले की भी है। एक अध्याय से चौथे अध्याय तक भगवद गीता के एक एक श्लोक का बहुत ही सुंदर तरीके से
पूरा
प्रभु जी ने ये किया है इसका अर्थ समझाया है। कई दफा श्लोक हमारे को समझ में नहीं आता उसका भाव समझ में नहीं आता तो एक एक श्लोक को बड़े विस्तार से समझाया है। तो ये पूरा जो सेट है ये
पूरा नहीं है
एक अध्याय से चार अध्याय तक ये भी आप ले सकते हैं और अगर कोई एक पुस्तक
तो लेनी है
तो वो भी ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि पुस्तक पढ़ना आपके लिए उतना आप समय नहीं दे पाएंगे तो आप श्रवण के रूप में भी प्रभु जी को अपने साथ ले जा सकते हैं प्रभु जी की वाणी को अपने घर में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का पूरा सेट है और प्रभु जी के द्वारा श्री गौर कथा का भी पूरा सेट उपलब्ध है। तो जिस किसी की भी इच्छा है तो आप आकर के और उसको प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं।
ये जो प्रभु जी की जो पुस्तकें हैं ये भगवत दर्शन पत्रिका आपके पास आती होगी आपके पास तो उसमें ये लेख जो है नियमित रूप से हर महीने छपते हैं और पिछले 15-20 सालों से ये लेख छपते आए हैं। पर पुस्तकों के रूप में अगर लेते हैं तो भगवत दर्शन पत्रिका में सीमित जगह होने के कारण तो 3 पेज में ही छपता है पर पुस्तक के अंदर वो एक ही श्लोक की व्याख्या है वो कई पेजों में छपती है। और ये इतनी अच्छी पुस्तकें हैं इनको जो पढ़ने वाले हैं उनके हृदय से जो है प्रशंसाएं अपने आप निकलती है। अभी मैं एक प्रशंसा आपको सुनाना चाहूँगा कम समय में तो वो जो कि उनको कविताएं बनानी भी नहीं आती पर प्रभु जी की पुस्तक की प्रशंसा में किस तरह से कविताएं उन्होंने बनाई तो मैं बनाने का प्रयास करूँगा। यह आदि जिला माता जी की तरफ से है जो छावला में रहती है।
भांति भांति के दृष्टांत देकर गीता संदेश आप सिखलाते, श्री कृष्ण प्रेम की दिव्य ज्योति तो जग में आप जलाते। तो ये कविता है उनकी, क्योंकि ये पुस्तकें तो हमेशा प्रभु जी की इस जगत में रहेंगे और गाइडेंस करेंगे और प्रचार के लिए सहायता करेंगे, कर भी होगी। जो भी पढ़ेगा इन पुस्तकों को बनेंगे उसी के काम, दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं जाएगा भगवत धाम। हरि बोल। प्रभु जी की पुस्तकें हैं अमृत का खंड, जो भी इन्हें पढ़ेगा दूर होगा उसके हृदय का पाखंड। हरि बोल। प्रभु जी के श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता को दिया यथा रूप, प्रभु जी ने भगवत गीता को दिया कथा रूप। तो इन जो पुस्तकों में भगवत गीता का संदेश को इतना सरल तरीके से समझाया है कि कोई बच्चे भी पढ़ेंगे तो उनको भी समझ में आएगा। तो ये इतना सरल कर दिया प्रभु जी ने कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, स्त्री हो, तो हर कोई व्यक्ति मतलब इस संदेश को समझ सकता है। कथा रूप ने बना दिया कृष्ण के संदेश को सरल, जो भी पढ़े इसे स्त्री वैश्य शूद्र बने भक्ति में प्रबल। कृष्ण का आदेश प्राप्त करने में प्रभु जी बने हमारे नायक, पुस्तकें पूरी करने में प्रभु जी को मिले शक्ति, कृष्ण हो उनके सहायक। क्योंकि ये काम जो है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि 18 अध्याय हैं जो भगवत गीता के, ये बहुत ही मतलब प्रभु जी के मुख से हमें समझने के लिए मिलता है। गीता के क्लास एवरी डे सुनते हैं, पर इन पुस्तकों से जब वो पढ़ते हैं तो पूरा पूरा जो भगवान ने कहा है भगवत गीता में वो चीज़ जो है हमें समझ में आती है। तो इसलिए सबकी शुभकामनाएँ और भगवान की जो आपकी ओर से प्रेयर वो भगवान पूरी कराए तो हो सकती है। वरना बहुत बड़ा काम है, तो प्रभु जी की हिम्मत है ऐसी कि उन्होंने रात रात में ये पुस्तकें लिखी हैं। दिन में तो बहुत सारे काम होते हैं, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये जो पुस्तकें हैं मैंने पहले क्यों नहीं ली, मैंने पहले क्यों नहीं लिया। करती हूँ कृष्ण से प्रार्थना पूरा जल्दी हो यह अभियान, जो छेड़ा है प्रभु जी ने कृष्ण का आख्यान। कृष्ण से करती हूँ विनम्र विनती बारंबार, प्रभु जी की पुस्तकों का हो सर्वत्र प्रचार। क्योंकि ये हमें पुस्तकें पढ़नी है और दूसरों को भी बता सकते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा जो है सफलता मिल रही है प्रचार में। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे यदुवर, प्रभु जी की पुस्तकों को कर दो अमर, तीनों लोकों में तो क्या पूरे ब्रह्मांड में फैल जाए ये खबर। हरी हरी। प्रभु जी की पुस्तकें हैं अनमोल रतन, पाएगा वही जो करेगा पठन। अरे मूर्ख प्राणी, पड़ा है क्यों माया के जाल में, पुस्तकें लिखी हैं श्री कृष्ण के लाल में। हरी हरी बोल। हरी बोल। पढ़ेगा जो तू एक बार इसे, हो जाएगा कृष्ण से प्यार तुझे। अब ये जो कविताएं आ रही है ये भी भगवान की ओर से आ रही है। मैंने आपको बताया कि उनको कोई कविता लिखने का कुछ भी अनुभव नहीं है और उन्होंने लिखी है कविता। अब बन जाएगा तू कृष्ण का प्यारा, अन्यथा भटकेगा तू मारा मारा, 84 लाख योनि में फिर नहीं आएगा, सीधा भगवत धाम ही जाएगा। तो आदि लीला माता जी की तरफ से भी ये शुभकामना है और भक्तों की तरफ से मिलती है। तो बहुत ही अच्छी भक्त है, वो प्रचार करती हैं, उन्होंने सैकड़ों भक्त बना रही हैं वो छावला में, नजरगढ़ में। तो उन्होंने ये लिखी है, तो उन्होंने का भी कहना यही है कि जब जो इस पुस्तक को पढ़ेगा जरूर भगवान सामने जाएगा। और ये पुस्तक आप ले सकते हैं यहाँ से प्रभु जी के हाथ से भी, ये सिर्फ 70 रुपये की है एक पुस्तक, जो भी नई आ रही है 7वीं पुस्तक है। बाकी जो 6 पुस्तकें हैं इससे पहले की वो 60 रुपये की है। और ये DVD भी है, इसमें गौड़ कथा है, बहुत ही सुंदर इसमें कथाएं हैं जो प्रभु जी के ऑडिटोरियम में हुई थी। इसमें जो है भगवान चैतन्य की सारी लीलाएं प्रभु जी ने एज ए फिर पढ़ के सुनाई है। और एक एक लीला आप जब इसको देखेंगे, ये वीडियो DVD, तो एक एक कथा के महात्म्य बहुत सुंदर है और बड़े बड़े हैं। इन कथाओं को सुनने से उसमें बताए गए कि भगवान के दास बन सकते हैं, श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो सकता है, ये सारी कथाओं का इसमें फल है जो इसका बताया। भागवतम कथा दी है तो ये भी आप ले सकते हैं, 500 का भी है, तो जिसको लेना है तो आ सकते हैं, प्रभुदीप से ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप जाने का भी नहीं है। अरे आप परिस्थान में भी मिल जाएगा। तो एक बार हम सभी मिलकर प्रभु जी का